हमको बना दे अदब का तो पैकर, करते रहे एहतराम शरीयत।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں پروگرام احترام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان. میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کریم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کر رہے تھے. جو مجمع آپ کے سامنے حاضر تھا، آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس مجمع میں کوئی قطع تعلقی اور قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ ہمارے درمیان نہ بیٹھے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور سیدھا اپنی پھپھی کے گھر چلا گیا، جس سے اس نے کئی سال سے سلام اور کلام ترک کر رکھا تھا. کوئی آپس میں رابطہ نہیں تھا اور قطع تعلقی اور قطع رحمی کا سلسلہ جاری تھا. پھپھی کے گھر پہنچے، جا کر پھپھی سے صلح کی. پھپھی نے سبب پوچھا کہ اتنے عرصے سے تو ہماری ناراضی چل رہی تھی، یہ یکدم تمہیں کیا ہوا کہ تم آئے، معافی تلافی کا سلسلہ شروع کیا، صلح کی بات لے کر آ گئے، صلح کا پیغام لے کر آ گئے، کچھ اس کا پس منظر تو بیان کرو. تو اس نوجوان نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز اور آپ کا یہ کلام اپنی پھپھی کو سنایا. پھپھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم جب واپس جاؤ تو صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر سوال کرنا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی. وہ نوجوان واپس گئے اور جا کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلام فرمانے کی اور اس انداز میں اعلان فرمانے کی وجہ دریافت کی. جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو. یہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینے والا جس قوم میں موجود ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث شریف آپ نے سن لی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انداز بھی دیکھ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لیا. یہ فرمان نبوی سننے کے بعد، عطائے صحابی دیکھنے کے بعد और उस नौजवान का जज्बा देखने के बाद कि सहाबी की जबान से सुना कि हमारे दरमियान कतार रहमी करने वाला ना बैठे, तो अब फौरी तौर पर सहाबी की सोहबत की बरकतों से फैजयाब होने के मुकद्दस जज्बे के तहत उठे, अपनी फूफी के पास गए, जाकर सुलह की। सुलह करने के बाद वापस आकर महफल में हाजिर हो गए। क्या प्यारा अंदाज था उस नौजवान का। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो फरमान हमें सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कतअ रहमी करने वाला हो। इस फरमान को पेश नजर रखते हुए आप सबको दावत दूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप भी इस पर गौर कीजिए। जब कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती तो जिस घर में कतअ रहमी करने वाले मौजूद होंगे उस घर में रहमतों का नुजूल कैसे होगा। कतअ रहमी यकीन जानिए बहुत बड़ा जुर्म है। हम बाज़ औक़ात ना कई चीजों को किसी और अंदाज में देखते परखते सुनते और समझते हैं, जबकि इसको देखने का अंदाज कुछ और होना चाहिए। जब रिश्ता निभाने का जहन हो तो फिर ये जहन भी बन जाता है कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। आमतौर पर कहा जाता है कि बर्तन जहां हूं तो वहां से कुछ ना कुछ आपस में उनके टकराने की आवाज तो आती है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हो जाएगा। कभी आपको उनके मिजाज के मुताबिक ढालना पड़ेगा और कभी उनको अपने मिजाज के मुताबिक ढालना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत भी हो सकता होती हो कि सामने वाले की तरफ से ज्यादती का सिलसिला होता हो। वो ज्यादती किस हद तक होती है, अगर हम थोड़ा सा जायजा भी उसका ले ना तो उसकी कैफियतें भी हमारी निगाहों के सामने आ जाएंगी। वो ज्यादती जिसको हम ज्यादती समझ रहे होते हैं ना कि जनाब इसने ये किया, फला मौके पर ये किया, फला मौके पर ये किया, फला मौके पर ये किया, मैं इसके साथ कैसे निभा की सूरत कर सकता हूँ, मेरा इसके साथ ताल्लुक कैसे चल सकता है। अगर उन तमाम तर चीजों का जायजा लेने की तरफ बढ़ते हैं ना तो उमूमन जो एक कैफियत हमारी निगाहों के सामने आती है वो ये कि जितनी भी वजूहात और जितने भी असबाब बयान किए जा रहे होते हैं कतअ ताल्लुकी करने के, अगर हम उनको शरीयत के मीजान पर लाकर परखते देखते और तोलते हैं कि क्या शरीयत इस वजह से हमें कतअ ताल्लुकी की इजाजत देती है, तो आमतौर पर यह होता है कि शरीयत मुतहरा की तरफ से उस फेल की वजह से कतअ ताल्लुकी करने की इजाजत नहीं होती। रिश्ता क्यों तोड़ दिया, मेरी वालिदा बीमार हुई थी ये पता करने नहीं आया था। रिश्ता तोड़ने की वजह क्या बनी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मेरे फलां अजीज रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था, ये नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आया, इस वजह से कतअ ताल्लुकी कर दी। या कोई बहुत बड़ी बात निकाल कर लाएगा ना तो वो बहुत बड़ी बात क्या होगी, वो बहुत ही बड़ी बात ये होगी कि मैंने इनसे बेटी का रिश्ता मांगा था, इसने रिश्ता नहीं दिया, इस वजह से नाराज हो गए। इसके अलावा दीगर जो भी वजूहात आपके जहन में आती हैं आप सोचते चले जाइए, वो दो चार पांच मेरा ख्याल मजीद वजूहात इसमें प्लस की जा सकती होंगी, तीन चार बातों का और इजाफा किया जा सकता होगा, पैसे मांगे थे उसने नहीं दिए, इस वजह से नाराज हो गए हालांकि इसके पास थे। बाज़ ऐसा होता है कि सामने वाले के बारे में ना हमारा गुमान ये होता है कि बहुत मालदार होगा, इसके पास बहुत पैसे होंगे, इस वजह से कि वो जगह जगह बैठकर रोता नहीं है, वो लोगों के सामने बैठकर ना अपने वो दुखड़े बयान नहीं करता, वो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की रजा पर राजी रहता है, सबर शुक्र के साथ जितने पैसे आए उसी में अपने घर का निजाम चला लिया, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है, वो किसी के सामने जाकर अपने दिल की कैफियत बयान नहीं करता, राजी खुशी रहता है। जब भी किसी के सामने जाएगा हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएगा, अगर कोई किसी हवाले से पूछ लेगा घर का निजाम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस किस तरह का जा रहा है, तुम्हारी नौकरी किस तरह की जा रही है, तो उसकी जबान पर एक ही जुमला होता है, मेरे रब का बड़ा ही करम है। इस अंदाज को देखकर ना हम ये समझ बैठे कि इसके पास पता नहीं कितना सरमाया होगा, हमने मांगा उसने कह दिया मेरे पास तो नहीं है, और हकीकत भी यही थी कि उसके पास नहीं थे। तो क्या ये वजह इस तरह की है कि इस वजह से मैं उसके साथ कतअ ताल्लुकी कर लूं, मेरे बाप का जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया, इस वजह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। शरीयत मुतहरा से पूछिए ना कि शरीयत इस हवाले से क्या कहती है कि नमाज जनाजा अदा करने के लिए अगर कोई नहीं आया तो वो कितना बड़ा मुजरिम है। اگر شریعت مطہرہ کی طرف بڑھیں گے نا تو شریعت مطہرہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ پوری بستی میں سے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی ساری بستی والے بری ہو گئے. شریعت جسے بری قرار دے رہی ہے میری نظر میں وہ مجرم کیوں ہے؟ شریعت جس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا میری نظر میں وہ گناہگار کیوں ہے؟ اور میری نظر میں وہ اس کیفیت میں کیسے آ گیا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس سے قطع تعلق ہی کر کے ایک طرف ہو گیا؟ میری زبان پر یہ جملے آ گئے, تم میرے لیے مر گیا میں تمہارے لیے مر گیا, زندگی میں کبھی ہمارا تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوگا. کیوں؟ شریعت کی نظر میں تو وہ بری ہے, شریعت کی نظر میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا, میری نظر میں مجرم کیوں ہے؟ میری ماں کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا, عیادت کرنا اس پر فرض تھا واجب تھا, اس نظر سے دیکھ لیجیے. نہیں, اگر تعلق برقرار رکھنا ہو تو حسن زن کے کئی پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جنازے کی اس کو وقت پر اطلاع نہ ہو سکی ہو, ہو سکتا ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہو, ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ پھنسا ہوا ہو کہ نہ نکل سکا ہو. میری ماں کا پتہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو ہو سکتا ہے اطلاع وقت پر نہ ملی ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس طرح کی مجبوری ہو, اس کے اپنے گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو, وہ اس کو لے کر ہاسپٹل کے چکر لگا رہا ہو, کبھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہا ہو, کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو, کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے, وہ خود کسی مصیبت میں مبتلا ہو. نہیں, حسن زن کی طرف ہم نہیں بڑھے, ہم نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا جس کی وجہ سے وہ رشتہ کاٹنے والا پہلو ہماری نگاہوں میں آ جائے. بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, اچھا بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیجئے, کیا آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے اگر کوئی بندہ آئے تو آپ فوری طور پر آپ ہاں کر دیں گے کہ اس کے ساتھ میرا 15 سال سے تعلق ہے, 20 سال سے تعلق ہے, یہ میرے باپ دادا کی اولاد میں سے ہے, اس نے رشتہ مانگ لیا, بس فوری طور پر یس سر یہ نعرہ لگاتے ہوئے کیا بیٹی کا رشتہ اوکے کر دیں گے؟ یہ بیٹی ہے, کوئی آلو پیاز کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے نہیں گئے کہ اتنے ڈال دو, اس نے فوری طور پر ڈال کر دے دیے. بیٹی کا باپ بیٹی کی ماں وہ 100 جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے ہوں گے, کئی ایک چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتے ہوں گے. اس نے رشتے میں ہاں کرنی ہے تو تمہارے بیٹے کے ساتھ بیٹی کا نکاح ہوگا نا, تمہارے ساتھ اچھے مراسم چلتے رہے, اچھے تعلقات چلتے رہے, ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کے کچھ ویک پوائنٹ اس کی معلومات میں ہوں, ہو سکتا ہے کئی اس طرح کی جہتیں ہوں جس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے غور کر رہا ہو. بعض اوقات اپنی اولاد کی کچھ کمزوریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس وجہ سے بندہ ہاں کرتے ہوئے شرماتا ہے. ہم دونوں کا اتنا اچھا تعلق اتنے عرصے سے چل رہا ہے, میری بیٹی اس کے مزاج میں تیزی ہے, ہاں کر دوں گا تو ہمارا اپنا تعلق کہیں خراب نہ ہو جائے. بہرحال حسن زن کی طرف جائیں گے تو کئی ایک پہلو نگاہوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے نا کہ نفس و شیطان نے ہمیں باولا بنا دیا, ہم تعلق کاٹنے کی طرف فوری طور پر دوڑتے ہیں, رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, ہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی, جس طرح نہ وہ گردن پر پاؤں رکھ کے نہ فوری طور پر ہاں نہ میں جواب لینے والی پوزیشن میں ہم ہوتے ہیں. اگر اس انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کریں گے نا تو جس نے تعلق نبھانا ہوتا ہے نا اس کو کئی ایک جہتیں اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ اس وجہ سے اس نے نہ کی ہوگی, کوئی نہ کوئی حسن زن کا پہلو اس نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. اور یہاں اگر قطع تعلقی کے تعلق سے ہم آیات کریمہ کی طرف بڑھیں, قطع تعلقی اور قطع رحمی کے تعلق سے اگر ہم نبوی ارشادات کی طرف بڑھیں, تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رب نے اگر مگر کے ساتھ تو کوئی بات ذکر نہیں کی کہ اگر رشتہ دار یوں کر دیں تو پھر قطع تعلقی کر لینا, اگر رشتہ دار یوں کر دیں تو قطع تعلقی نہ کرنا. جس نے بغیر کسی وجہ کے قطع تعلقی کی, بعض اوقات باقی آزار ہوتے ہیں اس طرح کے کہ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے لیکن عموماً وہ آزار نہیں پائے جاتے. وہ آزار کیا ہیں؟ وہ بد مذہب ہو گیا, وہ بے دین ہو گیا, شریعت مطہرہ کا باغی ہو گیا, اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اس انداز میں ہوا کہ ارتداد کی طرف نکل گیا, کفر کی طرف نکل گیا, گستاخی صحابہ کی طرف چلا گیا, اہل بیت اطہار کی شان میں تبرہ بازی بکنے لگا, اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سے سرکشی کی طرف نکل گیا. ایسی صورتیں تو بہت کم ہوتی ہیں, لیکن नॉर्मल अगर हालात को सामने रखते हुए हम देखें ना, तो छोटी 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 इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से कथा ताल्लुकी का सिलसिला किया जा रहा होता है। और ये सारी कैफियतें सामने रखते हुए ना, वही चीज ध्यान में आती है कि शायद वो जो बच्चों की लड़ाइयां होती हैं ना, बड़ों की लड़ाई भी उसी तरह की हो गई। बच्चे की लड़ाई किस तरह की होती है, सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है। बाद अवकात ऐसा होता है कि दो बच्चे एक माँ, एक बच्चा कह रहा है माँ मेरी है, दूसरा बच्चा कह रहा है माँ मेरी है, दोनों इसी वजह से लड़ रहे हैं। हालांकि हकीकत हाल क्या है, माँ इसकी भी है माँ उसकी भी है, दोनों की माँ। एक कह रहा होता है अबू मेरे हैं, दूसरा कह रहा होता है अबू मेरे हैं, इसी वजह से बच्चे लड़ रहे हैं। यही कैफियत है ना आज बड़ों की लड़ाइयों में भी हमारे सामने आती है। कोई बाकायदा से माकूल वजह नहीं होती रिश्ता तोड़ने की, लेकिन फिर भी रिश्ता तोड़ने की तरफ जा रहे होते हैं। आइए आपको अपने रब का फरमान सुनाऊं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है रिश्तों का लिहाज रखो। और दूसरी आयत करीमा की तरफ अगर बढ़े तो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यनकुदून अहद अल्लाह मिन बाद मीसाकिहि वयक्तऊन मा अमर अल्लाह बिहि अन युसल वयुफसिदून फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। वो जो अल्लाह के आहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसको जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया, रिश्ता, उस चीज को काटते हैं जिसको जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान वाले हैं। और एक मकाम पर इरशाद होता है, वल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकी वयक्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अन युसल वयुफसिदून फिल अर्द उलाइका लहुमुल लअनतु वलहुम सूउद्दार। और वो जो अल्लाह का आहद उसके पक्के होने के बाद तोड़ते और जिसके जोड़ने को अल्लाह ने फरमाया उसे काटते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इनका हिस्सा लानत ही है, इनका मुकद्दर लानत बनती है। इनका जो रिश्ता तोड़ने वाले हैं, जो कथा रहमी करने वाले हैं, और इनका नसीब बुरा घर है। ऐ रिश्ते तोड़ देने वालों, क्या अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की लानत का हकदार बनना कबूल है? क्या वो बुरा घर कबूल है? क्या ये खसारा कबूल है? हमारा रब इरशाद फरमा रहा है ना कि ऐसों के लिए तो लानत और बुरा घर है, ये लोग तो खसारा पाने वाले हैं। आपके सामने आयत कुरानिया मैंने तिलावत की और मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह से डरो और रिश्तों का ख्याल करो। जब मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया तो मैं अपने रब के फरमान को सुनने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद क्यों ना करूं। मेरे मौला मैं हाजिर हूं, मेरे पाक परवरदिगार मैं हाजिर हूं, मैं कभी भी कता ताल्लुकी करने की तरफ नहीं बढ़ूंगा। सामने वाले की गलती होगी ना, कोई बात नहीं, उसकी गलती है, गलतियां भी तो अपनों से ही होती हैं ना। कहा जाता है अपनों की गलतियां ये भी अपनी होती हैं। आप अगर उसकी गलती के बावजूद प्यारो मोहब्बत का सिलसिला लेकर चलें, उसकी गलती के बावजूद अगर आप मोहब्बत का बर्ताव करें तो यकीन जानिए उसके दिल में आपके बारे में जगह पैदा होगी। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सरकारे आले वक्कार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्ना काति'उ रहमिन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रहीम शजना, रिश्ता एक टहनी की तरह और एक शाख की तरह है, मन कताहा कताहुल्लाह व मन वसलाहा वसलाहुल्लाह, जिसने इस रिश्ते को काटा अल्लाह उसे काट देगा और जिसने इस रिश्ते को कायम रखा अल्लाह उसे कायम रखेगा। सलामती नसीब हो जाएगी रिश्तेदारी कायम रखने की वजह से, और जो रिश्ता काटेगा अल्लाह उसे काट देगा। आप अगर थोड़ा सा जायजा लेंगे ना, मेरा ख्याल है कोई बनजरे आमिकाना देखने की हाजत नहीं पड़ेगी, यानी गहरी नजर से देखने की हाजत नहीं पड़ेगी, आप तायराना सरसरी जायजा ले लीजिए, जो कैफियत आपके सामने आएगी ना, वो कैफियत ये होगी कि बाद अवकात ऐसा होता है एक आदमी बरादरी का बड़ा होता है, खानदान का बड़ा होता है, सब उसकी आवभगत करते हैं, प्यार और मोहब्बत का सिलसिला उसके साथ रखते हैं, लेकिन वो अपने बरादरी के दीगर अफराद का ख्याल उस अंदाज में नहीं रखता। वो रिश्ता काटने की तरफ बढ़ता है, रिश्ता काटने की धमकियां देता है, मुख्तलिफ तरह के अंदाज अपनाता है। अंजामे कार क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है? बाज़ुकात हमारे निकाहों में इस तरह के मनाजिर आते हैं कि जो बरादरी का बड़ा था, बरादरी के तमाम तर मामलात को लेकर चलने वाला था, सारे उसके साथ प्यार और मोहब्बत का सिलसिला करते थे, लेकिन वो कसा ताल्लुक ही करने वाला था। आज कैफियत ये आई कि सारी बरादरी एक तरफ है, वो अकेला एक तरफ है। बाज़ुकात इस तरह के नजारे हमारे सामने दुनिया ही में देखने को आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ बढ़ते हैं, ये चंद एक आयत मुबारका हमने सुनी। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने रिश्ता तोड़ने वाले के बारे में तीन बातें जिक्र फरमाई। पहली बात, ये खसारा पाने वाला, दूसरी लानत का हकदार, और तीसरी इसका नसीब बुरा घर है। और अगर आपके सामने माह रमजान से थोड़ा सा पीछे का एक मंजर रखो, शबे बरात आई थी, शबे बरात का मतलब ही छुटकारे की रात, और अहदीस में ये मजमून मौजूद है, कबीला बनू कल्ब की बकरियों के बालों की मकदार के हिसाब से अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू उम्मत मुहम्मदिया के अफराद को बख्शता है। इस कदर रहमतें छमा छम बरस रही होती हैं, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो शबे बरात भी नहीं बख्शे जाते। उनमें से एक रिश्ता काटने वाला है। रिश्ता काटने वालों, क्या हमें अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए? क्या हम अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू की बारगाह में सुरखरू नहीं होना चाहते? अब बहुत बड़ी बात भी करेंगे ना, तो इसके अलावा क्या कहेंगे, उसकी गलती है मैं क्या करूं, इसके अलावा क्या कहेंगे, चलो गलती उसी की सही, आप आगे बढ़ जाइए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जहां दो मुसलमानों की नाराजगी का जिक्र किया ना, तो मेरे आका ने वहां जिसकी गलती हो वो माजरत करने के लिए जाए, और वो आए तो सामने वालों को चाहिए कि मुआफ कर दे, ऐसी कोई बात जिक्र नहीं फरमाई। मेरे आका ने एक जुमला फरमाया, वो जुमला ये है, खैरुहुम अल्लज़ी यबदाउ बिस्सलाम, इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल कर दे। अगर इसकी गलती है तो ये आ जाए, अगर उसकी गलती है तो वो आ जाए, ये हुआ तो ये आ जाए, ये हुआ तो वो आ जाए, कोई ऐसी बात जिक्र नहीं की गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल कर दे। और आपके सामने खानदान अहले बैत की एक मिसाल रखूं, इमाम आली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम के पोते, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के नूरे नजर, बीमार करबला, हमारे सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया के मशायख में से आपका नाम नामी इसमें ग्रामी, खानदान अहले बैत के चश्मो चराग भी हैं, और हमें दो नस्बतें इनके साथ हासिल हैं, अहले बैत के एतबार से भी और सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया के मशायख के एतबार से भी, हमारे मशायख में से। हमारा तरीकत का ताल्लुक सैयद सज्जाद के कदमों को चूम कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ बढ़ता है। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने शहजादे इमाम बाकिर को इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे बेटे, कतार रहमी करने वालों के साथ दोस्ती ना रखना। दोबारा सुनिए, मेरे प्यारे बेटे, कतार रहमी करने वालों के साथ दोस्ती ना रखना, जो रिश्ता काटने वाला है ना उसकी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाना। कैसी प्यारी बात जिक्र की जा रही है। और इस फरमान को सामने रखते हुए अगर आप गौर करेंगे ना, जो अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ना निभा सका वो तुम्हारे साथ दोस्ती क्या निभाएगा? जिसने अपने बाप दादा की औलाद को छोड़ दिया, बालुका दो भाइयों की आपस में कता ताल्लुक ही होती है, बहन भाई की आपस में कता ताल्लुक ही होती है, और बालुका फुफी से, खाला से, मामू से, चचा से, ताया से, बिल्कुल करीब के रिश्तेदारों से कता ताल्लुक ही होती है। जो अपने इतने करीबी रिश्तों को छोड़ बैठा, क्या वो तुमसे मोहब्बत का बर्ताव रखेगा? क्या वो तुम्हारे साथ जीने मरने के वादे करेगा? जो अपने खूनी रिश्तों की कदर ना कर सका वो तुम्हारी कदर करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे बेटे, कतार रहमी करने वालों के साथ दोस्ती ना करना, इसलिए कि मैंने कुरान में तीन मकामात पर इस तरह के कलिमात पढ़े कि अल्लाह ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई, जिस पर अल्लाह की तरफ से लानतें बरसें तुम उसको अपनी दोस्ती का हाल समझोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप सब की खिदमत में अर्ज करूंगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, जायजा लीजिए, सोचिए। जितने भी रिश्तेदार सामने आते हैं ना, गलती इसकी, गलती उसकी, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये कहा, इसने ये कहा, सारी बातों को एक तरफ कर दीजिए, अल्लाह की रजा पे नजर रखिए। और ये जो बातें आपके सामने अर्ज की जा रही है ना, रहमत के फरिश्ते उस कौम पर नहीं आते जिसमें कतअ रहमी करने वाला। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। याद रखिए, वक्त इख्तिताम की तरफ है, एक वक्त आने वाला है कि हमें अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उस मुबारक नसीहत भरे कलाम पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। आप इरशाद फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
हमको बना दे अदब का तोपैकर, करते रहे एहतराम शरीयत।